नमस्कार भारत, 20 अक्टूबर रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। ब्रिटेन की संसद में फिर एक बार पास नहीं हो पाया ब्रेक्सिट सौदा।
Exactly what I've told everyone, that further delay would be bad for this country.
महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार थमा, कौन से मुद्दे छाए रहे?
दिलचस्प बात थी कि मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद कई सालों में कि चुनाव विधानसभा का है लेकिन डिस्कशन हो रहा था कश्मीर के बारे में।
जानेंगे असम के डिटेंशन कैंप में एक शख्स की मौत के बाद शव क्यों नहीं लेना चाहता परिवार।
मेंटली इल था ही वो, तो उसका डेथ हो गया, उसके बाद ये बॉडी उसको रिसीव करने के लिए फैमिली को रिक्वेस्ट किया गया, तो वो लोग बोले कि उसको पहले इंडियन डिक्लेयर करिए तब हम बॉडी लेंगे। तो
होगी हिंदी और उर्दू अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। नए ब्रेक्जिट समझौते पर संसद में एक अहम मतदान हारने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट में देरी के लिए यूरोपीय संघ को पत्र लिखा है, लेकिन उन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने इसके साथ ही एक दूसरा पत्र भी भेजा जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ब्रेक्जिट में देरी करना एक गलती होगी। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि वो संघर्ष विराम की निगरानी करने में नाकाम रहा है। कुर्द बलों के एक कमांडर जनरल मजलूम अब्दी ने बीबीसी से कहा कि तुर्की संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमले जारी रहे तो तुर्की की सेना कुर्दों का नस्लीय सफाया कर देगी। तुर्की इस समझौते का पालन नहीं कर रहा है, लड़ाई अब भी जारी है। संघर्ष विराम की शर्त एकदम साफ थी कि ये 120 घंटे के लिए होगा ताकि हम तब तक उन इलाकों से बाहर निकल जाएं। हम तुर्की से बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुर्की अपने मन की कर रहा है और समझौते का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि अमेरिका अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, वो सीज फायर की निगरानी नहीं कर रहा है। ये थे कुर्द बलों के एक कमांडर के शब्द। वहीं तुर्की का कहना है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन कुर्द कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि संघर्ष विराम पर रजामंदी के बावजूद अगर मंगलवार शाम तक कुर्द लड़ाके पीछे नहीं हटते तो उनका सिर कुचल दिया जाएगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चिली की राजधानी सैंटियागो में दो दिन के हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनियेरा ने मेट्रो का किराया बढ़ाने की योजना को टाल दिया है। इस बीच सैंटियागो के कई हिस्सों में सैनिक और टैंक तैनात कर दिए गए हैं। प्रदर्शनों में हुई हिंसा के बाद 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों मेट्रो स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई और कई बसों में आग लगा दी गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर तीन दिन हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद एक क्रिश्चियन पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। लेबनान फोर्सेस पार्टी के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री साद अल हरीरी पर दबाव बढ़ गया है, जिनसे प्रदर्शन कर रहे नाराज लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बुर्किना फासो के अधिकारियों ने बताया कि देश के उत्तरी हिस्से में स्थित सैन्य ठिकानों पर हुए हमले में उनके 5 सैनिकों की मौत हो गई है और 11 घायल हैं। ये हमला आधी रात को माली से लगने वाली सीमा के नज़दीक हुआ। इस हमले में इस्लामिक चरमपंथी सक्रिय हैं। स्पेन के बार्सिलोना शहर में लगातार छठे दिन कैटालोनिया की स्वायत्तता का समर्थन करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी 9 अलगाववादी नेताओं के जेल में डाले जाने से नाराज हैं। इन अलगाववादी नेताओं को सोमवार को जेल भेज दिया गया था। ताज़ा रैलियां शांतिपूर्ण तरीके से हुई हैं, इससे पहले शुक्रवार को हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। ब्राज़ील में हजारों लोगों ने उत्तर पूर्वी समुद्री तट से तेल और डामर साफ करने के अभियान में हिस्सा लिया। हाथों में प्लास्टिक के दस्ताने पहने लोग रेत और पानी से फवाड़े की मदद से डामर निकाल रहे थे और ठेला गाड़ी की मदद से उसे वहां से कहीं और ले जा रहे थे। कई लोग देर से कदम उठाने को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तट पर तेल फैलने के बारे में 6 हफ्ते पहले पता चल गया था। उत्तरी लंदन के एक फुटबॉल मैच को रद्द कर दिया गया है क्योंकि वहाँ एक खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। ब्रिटिश संसद में एक बार फिर ब्रेक्सिट सौदे को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। कल हुए मतदान में सांसदों ने इस सौदे में देरी किए जाने के पक्ष में वोट डाला, जिसके बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपियन यूनियन को खत लिखकर ब्रेक्सिट सौदे में देरी करने का आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने खत पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्होंने एक दूसरा खत भेजा है जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं और उन्होंने उसमें कहा है कि उन्हें लगता है कि सौदे में देरी एक गलती होगी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
शनिवार से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भरोसा था कि उनकी ब्रेक्जिट डील को ब्रितानी संसद में समर्थन मिल जाएगा, लेकिन शनिवार को उनका ये भरोसा टूट गया क्योंकि सांसदों ने उनके समझौते पर मतदान ही नहीं किया। इसके बजाय सांसदों ने एक संशोधन पर वोटिंग की जिसके तहत डील को तब तक मंजूरी नहीं दी जा सकती जब तक उसे लागू करने वाला कानून नहीं बन जाता। वोटिंग में इससे जुड़ा संशोधन पास हो गया जो प्रधानमंत्री जॉनसन के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि समझौते पर सहमति नहीं बनी और संशोधन आने से बिना समझौते के ब्रेक्जिट की संभावना भी खत्म हो गई। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने इस पर खुशी जाहिर की।
इट्स एन एम्फैटिक डिसीजन बाय दिस हाउस दैट हैज डिक्लाइंड टू बैक द प्राइम मिनिस्टर्स डील टुडे।
ये इस सदन का स्पष्ट फैसला है जिसने प्रधानमंत्री की डील का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। साफ तौर पर यह निर्णय हुआ है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बिना किसी समझौते के बाहर नहीं होगा। प्रधानमंत्री को अब कानून का पालन करना चाहिए। अब वो हमें ये कहकर नहीं धमका पाएंगे कि मेरे समझौते का समर्थन करो, नहीं तो बिना समझौते का ब्रेक्जिट करना होगा। ये थे लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रेक्जिट में देरी करना सही नहीं होगा।
I will tell our friends and colleagues in the EU exactly what I have told everyone in the last 88
मैं हमारे दोस्तों और यूरोपीय संघ के अपने सहयोगियों से वही कहूंगा जो पिछले 88 दिनों में सबसे कह रहा हूं कि ब्रेक्जिट में और देरी इस देश के लिए, हमारे यूरोपीय संघ के लिए और लोकतंत्र के लिए बुरी है। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। जिस वक्त ब्रितानी संसद के अंदर ये अहम वोटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त बाहर सेंट्रल लंदन में लाखों लोग ब्रेक्जिट पर फिर से जनमत संग्रह कराने की मांग को लेकर मार्च कर रहे थे। जैसे ही उन्हें संसद में हुए मतदान के नतीजों का पता चला, इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मार्च में शामिल एक महिला ने कहा, हम इस मतदान से बेहद खुश हैं, जिसका मतलब है कि नए समझौते पर पूरी चर्चा होगी और ब्रेक्जिट 31 अक्टूबर के बाद होगा। मार्च कर रहे लोगों के लिए ये एक बड़ी जीत है। ये थे मार्च में शामिल एक महिला के शब्द। अब कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ब्रेक्जिट के लिए यूरोपीय संघ से और वक्त मांगना था, लेकिन जॉनसन ने कहा कि वो यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट के लिए और वक्त नहीं मांगेंगे और 31 अक्टूबर को ही ब्रेक्जिट कराएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने यूरोपीय संघ को ब्रेक्जिट में देरी के लिए गुजारिश करते हुए पत्र भेजा। इसके साथ उन्होंने एक और चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि उनका मानना है कि ये देरी एक गलती होगी। ईयू काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट किया है कि उन्हें चिट्ठी मिल गई है। उन्होंने कहा कि वो अब यूरोपीय संघ के नेताओं से चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है।
ब्रिटेन ब्रेक्सिट सौदे के बिना यूरोपियन यूनियन से बाहर आएगा या नहीं, ये उसे 31 अक्टूबर तक यूरोपियन यूनियन को साफ कर देना है। लेकिन लगातार हो रही देरी से सौदा लटका पड़ा है। अब संसद में फिर एक बार इसके नापास होने से क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है और इसमें आगे क्या होगा, यही जानने के लिए मैंने लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से बात की।
आगे क्या होगा इसको लेकर बहुत अनिश्चितता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर कानून अब ये कहता है कि बोरिस जॉनसन को अब एक चिट्ठी लिखकर यूरोपीय यूनियन से 3 महीने की डिले की, यानी कि 3 महीने के अतिरिक्त समय की मांग करनी चाहिए, वरना ये कानून का उल्लंघन होगा और इन 3 महीनों में ब्रेक्सिट की डील पर बातचीत यहाँ की विपक्षी पार्टियों के साथ की जाए। ब्रितानी सांसदों ने कहा कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है कि क्या क्या कानून पास किए जाएंगे जिसके तहत डील को लागू किया जा सके, इसलिए आज वो डील पर वोट नहीं करेंगे। तो बोरिस जॉनसन का ये मानना है कि ये सब बातें वो अगले सप्ताह में साफ कर देंगे और 31 अक्टूबर से पहले डील को पास भी करा देंगे संसद से। इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें यूरोपीय यूनियन से किसी भी तरह की एक्सटेंशन यानी अतिरिक्त समय की मांग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियाँ इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखती और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने यूरोपीय यूनियन से और वक्त नहीं मांगा तो विपक्षी पार्टियां इसको लेकर और अड़चनें पैदा कर सकती हैं और अदालत का रुख भी कर सकती हैं।
दिव्या, आप हमें ये बताएं कि जिस तरीके से हर बार किसी न किसी प्रधानमंत्री काल में ये अटक जाता है या विधेयक या प्रस्ताव गिर जाता है तो हर बार उनको कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने लगते हैं, तो अब बोरिस जॉनसन के नेतृत्व को लेकर तो कोई खतरा नहीं है?
इस वक्त उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों में तो इतना मनमुटाव नहीं है उनके नेतृत्व के बारे में, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये कहा कि वो ज़रूर 31 अक्टूबर को ये पारित करा देंगे, ये डील एक करवा देंगे और डील या बिना डील के ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से हट जाएगा, उनके इस दावे को आज धक्का ज़रूर लगा है। और अगर उनके शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा था डू और डाई, यानी करो या मरो, मैं जिंदा नहीं रहूँगा लेकिन ब्रेक्सिट होके रहेगा। तो इस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन संसद में जो नंबर्स उन्हें चाहिए वो उनके पास होते नहीं दिख रहे हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का एक मुख्य समर्थक रही है नॉर्दर्न आइलैंड की एक पार्टी जिसका नाम है डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी DUP, जिनके 10 सांसद हैं, और आज उन 10 सांसदों ने भी बोरिस जॉनसन की पार्टी के खिलाफ वोट किया। यानी कि अगर इस पार्टी ने अपना समर्थन बोरिस जॉनसन को जारी नहीं रखा तो जो उनका ये सपना है कि डील पारित हो जाए संसद में, इसको पूरा होने के आसार इसके नहीं दिखते हैं। तो इसलिए उनके नेतृत्व को उनकी पार्टी के तहत अंदर नहीं पर हाँ संसद के अंदर इस वक्त थोड़ा धक्का आज जरूर लगा है।
ब्रिटिश संसद ने ब्रेक्सिट सौदे में देरी के लिए मतदान किया। अधिक जानकारी दे रही थी दिव्या आर्य। रुख करते हैं अब चुनावी खबरों का। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम 6 बजे थम गया। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। BBC संवाददाता आदर्श राठौर ने बात की BBC मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित से और जानना चाहा कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कैसा रहा, कौन कौन से पक्ष मैदान में रहे और उन्होंने किन किन मुद्दों पर बात की।
इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये महाराष्ट्र का चुनाव था लेकिन इस बार चर्चा में सबसे ज़्यादा रहा जम्मू और कश्मीर, और भाजपा के कई नेता जो दिल्ली से आए और जो महाराष्ट्र से भी थे वो 370 की बात कर रहे थे, 35A की बात कर रहे थे, और विपक्ष बार बार कह रहा था कि ये महाराष्ट्र का चुनाव है, आप बाढ़ के बारे में बात कीजिए, सूखे के बारे में बात कीजिए, रोज़गार के बारे में बात कीजिए। तो ये दिलचस्प बात थी कि मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद कई सालों में कि चुनाव विधानसभा का है लेकिन डिस्कशन हो रहा था कश्मीर के बारे में।
जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो लोगों को कितना अपील कर रहे थे इस बार मुद्दे?
नेशनल सिक्योरिटी एक मेजर इशू BJP की तरफ से बनाया जा रहा था और BJP ने और भी चीज़ों पर बात तो की पर ये उनका एक मेन फोकस रहा। BBC मराठी के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जगह जगह जाके लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की क्या सचमुच उनके लिए कश्मीर का मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था 370 क्या है, स्पेशली जब हम गांव में गए, कस्बों में गए, छोटे छोटे कस्बों में, उन्हें पता ही नहीं था 370 क्या है। जिन लोगों से बात हुई उनमें से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 370 अच्छा हुआ, जो कुछ भी सरकार ने किया वो अच्छा किया लेकिन उन सब चीज़ों का हमसे क्या लेना देना है, ऐसा लोग कह रहे थे। पर एक बात है कि खुल के सरकार का विरोध इस मुद्दे पर करने वाले बहुत कम लोग हमें मिले।
विपक्ष में ऐसा दिख रहे हैं कि बिखराव देखने को मिला।
विपक्ष इस बार शुरुआत में तो बहुत ही कमजोर दिख रहा था क्योंकि जब कैंपेनिंग शुरू होने जा रहा था तभी बहुत सारे कांग्रेस और NCP के नेता BJP और शिवसेना ज्वाइन करने लगे और ऐसा लग रहा था कि इस बार तो विपक्ष होगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद शरद पवार ने कैंपेनिंग करना शुरू किया और वो दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे थे। वो 79 ईयर ओल्ड है और फिर भी कर रहे थे, और जो उनकी रैली हुई सातारा में जब जम के बारिश हो रही थी और उन्होंने फिर भी रैली की, वो फोटोज बहुत वायरल हुए, वीडियोज भी वायरल हुए, और एक तरीके से मुझे लगता है शरद पवार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं आखिरी दम तक फाइट करूंगा, जीतूंगा या हारूंगा ये तो पता नहीं लेकिन मैं फाइट करूंगा। अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े लीडर थे। इस बार नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं चुनाव लड़े गए, देवेंद्र फडणवीस के नाम से पोस्टर्स छापे थे, देवेंद्र फडणवीस के नाम से सभी एडवर्टीजमेंट चल रही है। तो देवेंद्र फडणवीस और उनके सामने थे शरद पवार। तो अगर आप कैंपेनिंग की बात करें तो ये इन दोनों के बीच में एक क्लैश ऑफ टाइटन्स था।
महाराष्ट्र के चुनावी मुद्दों का हाल बता रहे थे बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित। अब रुख करते हैं हरियाणा का, जहां की 90 विधानसभा सीटों के लिए कल ही मतदान होना है। चुनाव प्रचार के दौरान बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में घूमे। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने भी उनसे यही पूछा कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किन मुद्दों किन विषयों पर प्रचार केंद्रित रहा।
इस बार जो चुनाव है थोड़े अलग तरह के चुनाव नजर आ रहे हैं। ये ऐसे चुनाव है जहाँ मुद्दे थोड़े से कम है और जो पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव नजर आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें नरेंद्र मोदी और जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो हैं जो मेन पर्सनालिटीज हैं जो अपना करिश्मा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला वो हैं, और तीसरी तरफ जो चौटाला हैं वो अपना पर्सनालिटी के ऊपर वोटों के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो दो पार्टियों में अलग अलग डिवाइडेड हैं, इंडियन नेशनल लोकदल है इनेलो है और दूसरी तरफ जेजेपी है। तो अगर हम मुद्दों की बात करें, जिस तरीके से पिछले सालों में कुछ बड़े इवेंट्स अगर हम कहें हुए, जिस तरीके से जाट आंदोलन हुआ जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी, फिर डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं उर्मीत राम रेमिंग उनकी गिरफ्तारी के बाद काफी हिंसा देखने को मिली, फिर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा जरूर जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं वो कम उठाए जा रहे हैं। तो पर्सनैलिटी बेस्ड जो चुनाव है इस बार थोड़े नजर आ रहे हैं।
हरियाणा विधानसभा के लिए होगा मतदान, अधिक जानकारी दे रहे थे अरविंद छाबड़ा। असम के तेजपुर सेंट्रल जेल के डिटेंशन कैंप में बंद 65 साल के दुलाल चंद्र पॉल नामक एक कैदी की मौत ने प्रदेश की सरकार को एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में डाल दिया है। दरअसल दुलाल चंद्र पॉल को 2017 में शोणितपुर की एक विदेशी ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था और तब से वो डिटेंशन कैंप में ही बंद थे, लेकिन बीते रविवार को बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। अब उनके परिवार के लोगों ने ये कहते हुए शव को लेने से इनकार कर दिया है कि वो एक विदेशी नागरिक का शव नहीं ले सकते। गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में विदेशी घोषित किए गए दुलाल चंद्र पाल नामक एक व्यक्ति की मौत के बाद खासकर हिंदू बंगाली लोग काफी नाराज हैं। दरअसल हाल ही में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC की जो फाइनल लिस्ट प्रकाशित हुई थी उसमें सबसे ज्यादा नाम हिंदू बंगाली लोगों के छूटे थे। ऐसे में डिटेंशन कैंप में बंद दुलाल चंद्र पाल की मौत से न केवल उनका परिवार गुस्से में है बल्कि हिंदू बंगाली लोगों के जख्म और हरे हो गए हैं। दुलाल चंद्र पाल की बीते रविवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मौत हो गई थी और तब से उनका शव अस्पताल के मुर्दा घर में रखा हुआ है। उनके 25 साल के बेटे अशोक पाल ने अपने पिता के शव को लेने से इनकार कर दिया है।
हमारा डिमांड एक ही माने हमारे बाबा बांग्लादेशी उठाया ले गेलो 2 बरस डिटेंशन कैंप से।
मेरे पिता को बांग्लादेशी घोषित कर घर से उठा ले गए थे, 2 साल डिटेंशन कैंप में कैद रखा, अब हिरासत में उनकी मौत हो गई है तो सरकार हम लोगों पर उनका शव ले जाने के लिए दबाव बना रही है। ये किस तरह का न्याय है? जब मेरे पिता जिंदा थे तो उन्हें बांग्लादेशी बना दिया, तो मरने के बाद वे स्वदेशी कैसे हो सकते हैं? सरकार को हमें लिख कर देना होगा कि वे भारतीय नागरिक थे, तभी हम उनका शव ग्रहण करेंगे, हम बांग्लादेशी व्यक्ति का शव लाने नहीं जाएंगे। ये थे अशोक पाल के शब्द। राज्य सरकार परिवार के सदस्यों को शव ले जाने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने दुलाल चंद्र पॉल के गांव अपने एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा था, लेकिन परिवार वालों ने मांग रखी है कि जब तक सरकार दुलाल चंद्र पॉल को भारतीय नागरिक घोषित नहीं करती वे उनका शव लाने नहीं जाएंगे। सोनितपुर जिले के जिला उपायुक्त मानवेंद्र प्रताप सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए BBC से कहा,
दरअसल ये जो दुलाल चंद्र पॉल है इसको फॉरेनर डिक्लेयर किया था फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने 2017 में, उस समय ही वॉज मेंटली इल, तो उस समय उसको फिर उसको डिटेंशन कैंप में भेजा गया और वो लास्ट 2 इयर्स डिटेंशन कैंप में था। पिछले महीने 26 तारीख को बीमार कुछ शिकायत हुई तो उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सीवियर डायबिटीज था उसको और मेंटली इल था ही वो, तो उसका डेथ हो गया। उसके बाद ये बॉडी उसको रिसीव करने के लिए फैमिली को रिक्वेस्ट किया गया तो वो लोग बोले कि उसको पहले इंडियन डिक्लेयर करिए तब हम बॉडी लेंगे। तो
पॉल की मौत से हिंदू बंगाली समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी है। इस घटना से नाराज ऑल असम बंगाली यूथ स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदीप डे कहते हैं,
तो यही सोच रहे हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका पहला प्रेसिडेंट था और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये दल बंगाली हिंदू को विदेशी करा रहा है। हमारा हालत एकदम बदतर से बदतर हो गया है। अभी आसाम में कभी ऐसा नहीं था, पहले कभी ऐसा नहीं था, कांग्रेस का टाइम में भी नहीं था, एजीपी का टाइम में भी नहीं था, मगर बीजेपी का टाइम में ऐसा बदतर से बदतर हालत हो गया है हमारा बंगाली हिंदू को।
सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुलाल चंद्र पाल के रबड़तला आलिसिंगा गांव में हिंदू बंगाली लोगों के करीब 200 परिवार रहते हैं जो इस घटना के बाद डरे हुए हैं। अपने इस भय का जिक्र करते हुए दुलाल चंद्र पाल के भांजे सुकुमल पाल कहते हैं,
लोगों को हेरेसमेंट करना है, कोई आदमी अगर उसको फॉरेनर कर दिया है, अगर बॉर्डर पुलिस उसको फॉरेनर बना दिया, उसको सरकार उसका डॉक्यूमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई तुरंत करना चाहिए, उसके बाद में उसको फॉरेनर है क्या इंडियन है उसको देख के उसको जेल में भेजना, वो 2-3 साल जेल में रहेगा तब तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगा। वो इस तरह तो कई घटना हो रहा है तो डर तो हो ही सकता है।
असम में 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोलने वाले लोगों की आबादी 91 लाख से अधिक है जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 29% है। इनमें करीब 31% बंगाली बोलने वाले लोग हिंदू हैं और इन्हीं लोगों की एक बड़ी आबादी अपनी नागरिकता को लेकर चुनौतियों का सामना कर रही है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अब जान लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास छपा है। अखबारों के साथ स्टूडियो में गुरप्रीत सैनी मौजूद हैं। जी गुरप्रीत बताएं।
जी, कमलेश तिवारी की हत्या, भारत में ईश निंदा पर हत्या का संभवतः पहला मामला, ये हेडलाइन लगाई है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के 24 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते की संयुक्त टीम ने मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के पीछे सूरत के एक कट्टरपंथी इस्लामी समूह का हाथ होने की बात कही है। पुलिस का मानना है कि ये भारत में ईश निंदा की वजह से हुई हत्या का पहला मामला हो सकता है। दरअसल हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष और अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने 2015 में पर्चे बंटवाए थे जिसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बातें थी। इसके बाद से ही वो चरमपंथी मुस्लिम समूह के रडार पर थे।
हालांकि परिवार उनका बहुत सवाल उठा रहा है और परिवार ने कहा है कि ये कहीं और, परिवार का आरोप है कि इस जांच को कहीं और मोड़ा जा रहा है, जबकि इसको आपसी रंजिश की बात भी कही जा रही है, परिवार का कहना है।
जी। और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव अभियान खत्म हो गया है। 21 अक्टूबर यानी कल
मतदान होना है। और अखबारों में इससे जुड़ी खबरें हैं। जनसत्ता इस पे शीर्षक लगाता है गुरप्रीत के, प्रचार खत्म, कल होगा मतदान।
जी, द हिंदू अखबार में एक खबर है कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुर्की दौरे को रद्द कर दिया है। साल के अंत में होने वाला था ये दौरा। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के भारत के फैसले की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुर्की दौरे को रद्द करके जवाब दिया है।
जी।
हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान से होने वाले ड्रग्स की तस्करी से वैसे ही निपटना होगा जैसे चरमपंथ से लड़ते हैं।
इसके अलावा जनसत्ता में मैं देख सकता हूं गुरप्रीत के करतारपुर जो गुरुद्वारा का कॉरिडोर खुलने वाला है, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो जो पाकिस्तान की ओर से समारोह है उसमें नहीं जाएंगे, उसे ठुकरा दिया, वो आम श्रद्धालुओं की तरह करतारपुर जाएंगे। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। हिंदी अखबारों की समीक्षा के बाद अब जान लेते हैं कि बीते हफ्ते पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में क्या कुछ खास छपा था। उर्दू अखबारों की समीक्षा को तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने और इसे अपनी आवाज़ दी है अपूर्व कृष्ण ने।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भारत प्रशासित कश्मीर STF और एक विपक्षी नेता मौलाना फजलुर रहमान के होने वाले आज़ादी मार्च से जुड़ी खबरें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। भारत प्रशासित कश्मीर में महिलाओं के एक प्रदर्शन का जिक्र पाकिस्तान के सभी अखबारों में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी महिलाओं के एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने रैली को नाकाम बनाते हुए फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी समेत दर्जनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया था। इस पर अखबार एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, भारत निहत्थी महिलाओं से भी खौफजदा। फारूक अब्दुल्ला की बहन बेटी समेत दर्जनों गिरफ्तार। शुक्रवार को पाकिस्तान के कई शहरों में भारत प्रशासित कश्मीर में रह रहे लोगों के समर्थन में प्रोग्राम आयोजित किए गए। अखबार दुनिया के मुताबिक शुक्रवार को लोगों ने काली पट्टी बांधकर कश्मीरियों पर कथित भारतीय जुल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधी जिस पर लिखा था, मैं कश्मीर हूँ। इमरान खान भले ही हर फोरम पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते रहते हैं और कश्मीरियों का समर्थन करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक वर्ग ऐसा भी है जो कश्मीर के मामले में इमरान खान की कड़ी आलोचना करता है और उन्हें इस मामले में पूरी तरह विफल मानता है। अखबार जंग में सलीम साफी ने एक कॉलम लिखा है जिसका शीर्षक है, कश्मीर अब क्या होगा। इस कॉलम में उन्होंने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और खासकर प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर आलोचना की है। उनके अनुसार कश्मीर के मामले में इमरान खान बुरी तरह नाकाम रहे हैं। वो लिखते हैं कि 65, 71 और फिर करगिल की जंग हुई। इन जंगों के अलावा भी कई बार ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के सामने आईं, लेकिन कभी भी भारत सरकार ये हिम्मत नहीं कर सकी कि कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों में कोई बदलाव कर सके। यह पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों को छीनते हुए उसके विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इमरान खान ने जोरदार तकरीर जरूर की, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका का कोई समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के पाकिस्तान के बारे में दिए गए फैसले की खबर भी सारे अखबारों में प्रमुखता से छपी। FTAF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है, लेकिन उसने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने फरवरी 2020 तक इस मामले में जरूरी कदम नहीं उठाया तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। लेकिन कई अखबारों ने इसमें भी भारत का नाम घसीटने की कोशिश की है। जंग, दुनिया और नवाए वक्त जैसे अखबारों ने सुर्खी लगाई है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने की भारतीय कोशिश नाकाम।
पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की समीक्षा आप सुन रहे थे, जिसे तैयार किया था इकबाल अहमद ने, और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। शुरुआती झटकों से उभरकर भारत ने रांची में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होते होते दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर भेज दिया। भारत के कप्तान विराट कोहली का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तब गलत लगने लगा जब उसके 3 विकेट केवल 39 रन पर गिर गए, लेकिन स्टंप के समय भारत का स्कोर 3 विकेट खोकर 224 रन था। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 117 और अजिंक्य रहाणे 83 रन बनाकर नाबाद थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए अभी तक 185 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। वैसे भारत की पहली पारी उस समय संकट में फंसती नजर आई जब मयंक अग्रवाल 10 और चेतेश्वर पुजारा बिना कोई रन बनाए तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा का शिकार हो गए। उसके बाद रबाडा के सहयोगी एनरिच नॉर्जे ने कप्तान विराट कोहली को LBW कर दिया। पिछले टेस्ट मैच में नाबाद दोहरा शतक बनाने वाले विराट कोहली के बल्ले से केवल 12 रन निकले। इसके बाद पूरे दिन रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने जमकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना किया। रबाडा ने 54 रन देकर 2 और नॉर्जे ने 50 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कल का खेल समाप्त होने के बाद भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने माना कि शुरुआती मदद के बाद अब विकेट गेंदबाजों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की तारीफ करते हुए कहा,
दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। जब इनिंग स्टार्ट हुआ तो विकेट में कुछ था, थोड़ा मॉइस्चर था शायद, तो विकेट वाज डूइंग समथिंग। अच्छी लेंथ पे भी डाला उन्होंने, आई थिंक दे बोल्ड बेटर एरियाज, बट रिकवरी वाज फेनोमिनल। आई थिंक बोथ ऑफ देम बैटेड रियली रियली वेल, और अभी लंच के बाद लगता है विकेट थोड़ा बेटर भी हो गया है, तो वी शुड कैच दिस।
भारत ने इस टेस्ट मैच में एक परिवर्तन करते हुए तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह स्पिनर शाहबाज नदीम को खिलाया है। उधर मलेशिया में कल समाप्त हुए सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को ब्रिटेन के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की ओर से स्टुअर्ट रश्मेरे ने खेल के 50वें और 60वें मिनट में गोल किए, जबकि भारत के लिए इकलौता गोल खेल के 49वें मिनट में गुरसाहिब जीत सिंह ने किया। वहीं बंगाल वॉरियर्स ने कल प्रो कबड्डी लीग के 7वें सीजन का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को 39-34 से हराया।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। नए ब्रेक्जिट समझौते पर संसद में एक अहम मतदान हारने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट में देरी के लिए यूरोपीय संघ को पत्र लिखा है। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि वह संघर्ष विराम की निगरानी करने में नाकाम रहा है। चिली की राजधानी सैंटियागो में दो दिन के हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति ने मेट्रो का किराया बढ़ाने की योजना को टाल दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर तीन दिन हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद एक क्रिश्चियन पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। लेबनान फोर्सेस पार्टी के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री साद अल हरीरी पर दबाव बढ़ गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की तकनीकी कमान संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।